एहेस्केल अध्याय छः। एहेस्केल की पुस्तक अध्याय छः। इस अध्याय में एहेस्केल इसराइल के पर्वतों को संबोधित करता है। इसराइलियों ने पहाड़ों पर बाल, अमोन और मोलेक देवताओं की उपासना स्थल बनाए थे, क्योंकि पर्वतों पर ये वेदियां तथा वृक्ष कुंज तथा देवी देवताओं के आराधना स्थल थे। वो पर्वतों के उजाड़ की भविष्यवाणी देता है कि वीरान हो जाएंगे। अध्याय 34 और 35 में भी वो इसराइल के पर्वतों के लिए संबोधित करके भविष्यवाणी करता है। ये पर्वत जो वीरान हो जाएंगे, वे फिर से मनुष्यों को देखेंगे। अतः पहाड़ों को दी गई भविष्यवाणी के अनुसार परमेश्वर के दंड के बाद इसराइल का पुनस्थापना होगा। एहेस्केल अध्याय 6 पद 1 से लेकर 3 तक। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख इसराइल के पहाड़ों की ओर करके उनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और कह, हे इसराइल के पहाड़ों, प्रभु यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा पहाड़ों और पहाड़ियों से और नालों और तराइयों से यूं कहता है, देखो मैं तुम पर तलवार चलाऊंगा और तुम्हारा पूजा के ऊंचे स्थानों को नाश करूंगा, अर्थात उन ऊंचे स्थानों और कुंजों पर जो आराधना के लिए इस्राएल वासियों ने बनाए थे। एहेस्केल अध्याय 6 पद 4 से लेकर 7 तक। तुम्हारी वेदियां उजड़ेंगी और तुम्हारी सूर्य की प्रतिमाएं तोड़ी जाएंगी, और मैं तुम में से मारे हुओं को तुम्हारी मूर्तों के आगे फेंक दूंगा। मैं इसराइलियों की लोतों को उनकी मूर्तों के सामने रखूंगा और उनकी हड्डियों को तुम्हारी वेदियों के आसपास छितरा दूंगा। तुम्हारे जितने बसाए हुए नगर हैं, वे ऐसे उजाड़ जाएंगे कि तुम्हारी पूजा के ऊंचे स्थान भी उजाड़ हो जाएंगे। तुम्हारी वेदियां उजड़ेंगी और ढाई जाएगी, तुम्हारी मूर्तें जाती रहेंगी और तुम्हारी सूर्य की प्रतिमाएं काटी जाएंगी और तुम्हारी सारी कारीगरी काटी जाएगी और तुम्हारे बीच मारे हुए गिरेंगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। वो आने वाले नरसंहार और देवताओं के उपासना स्थलों के विनाश की तथा मूर्तियों के तोड़े जाने की और उनके टुकड़ों को और अभक्त मनुष्यों की हड्डियों के बिखराए जाने की भविष्यवाणी देता है। एहेस्केल अध्याय 6 पद 7 में हम एक रोचक उक्ति को देखते हैं, जिसका प्रयोग एहेस्केल ने 62 बार किया है, और तुम जानोगे कि मैं यहोवा हूं, क्योंकि मैं उनकी मूर्ति पूजा को नाश कर दूंगा। एहेस्केल के अध्याय 38 में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने रूस के आने वाले भयंकर आक्रमण के समय रूस और उसके मित्र राष्ट्रों के विनाश की भविष्यवाणी की है। जब परमेश्वर ने उन्हें पूरी तरह से नाश कर दिया, तब उसने कहा, सब जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूं। उसका उद्देश्य यही है कि वे जाने यहोवा ही परमेश्वर है। वे उसे दूर होकर अन्य देवताओं के पीछे भागते हैं, इसलिए वो बार बार कहता है, मैं उन्हें दंड दूंगा और वे जानेंगे कि मैं यहोवा हूं, क्योंकि वे झूठे ईश्वरों अर्थात मूर्तियों की पूजा करते थे। एहेस्केल अध्याय 6 पद 8। परमेश्वर ने कहा, तो भी मैं कितनों को बचा रखूंगा। सो जब तुम देश देश में तितर बितर होंगे, तब अन्य जातियों के बीच तुम्हारे कुछ लोग तलवार से बच जाएंगे। परमेश्वर ने इसराइल को कठोर दंड दिया। अब लोग कहेंगे, परमेश्वर ने अपने ही लोगों को कठोर दंड क्यों दिया? बाइबल के नए नियम में यीशु ने कहा, लूका अध्याय 12 पद 48, जिसे बहुत सौंपा गया है उसे बहुत लिया जाएगा। इन लोगों को परमेश्वर ने बहुत आयत से आशीष दी थी, और सत्य तो यह है कि वे पृथ्वी पर सबसे अधिक आशीषित लोग थे। पौलुस ने कहा, रोमियो अध्याय 3:1-2, सो यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ, हर प्रकार से बहुत कुछ, पहले तो ये कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए, परमेश्वर ने उन्हें बहुत अधिक दिया और परमेश्वर भी उनसे अधिक वापस का आकांक्षा करता है। ये मत सोचिए कि ये चेतावनी केवल यहूदियों के लिए है, ये चेतावनी हमारे लिए भी है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन का ज्ञान और समझ हमें भी बहुतायत से दी है। इस कारण परमेश्वर का उन्हें कठोर दंड मिला जो भयानक था और लंबे समय के लिए था, परंतु यहां ध्यान देने योग्य एक बात है कि उन्होंने यद्यपि परमेश्वर का त्याग किया, परंतु कुछ लोग निरंतर परमेश्वर के भक्त और निष्ठावान रहे। इजेबेल और राजा आहाब के समय राजकीय ईश्वर त्याग था, जिसके कारण एलिया को बाल के पुजारियों को कर्मेल पर्वत पर चुनौती देना पड़ी थी, जिसके सफल होने के कारण जन समुदाय एलिया के साथ हो गया था। एलिया ने अवसर का लाभ उठाया और 400 बाल पुजारियों को नदी के घाट पर मार डाला। इजेबेल उस समय नगर से बाहर गई हुई थी। जब उसे उस घटना का समाचार मिला, तब उसने प्रण किया, यदि मैंने कल तक उसका सिर ना कटवा दिया तो देवता मेरे साथ भी ऐसा ही करें। ये सुनते ही एलिया सीनाई पर्वत पर भाग गया और एक गुफा में छिप गया। वहां परमेश्वर ने उसे पुकार कर कहा, तू यहां क्या कर रहा है? एलिया ने उत्तर दिया, मैं यहोवा के लिए जलन रखता था और सारा इसराइल परमेश्वर से दूर हो चुका है, अब केवल मैं ही बचा हूं, अब वे मुझे भी घात करना चाहते हैं। परमेश्वर ने तब उससे कहा, मेरे पास 7,000 ऐसे जन है जिन्होंने बाल को दंडवत नहीं किया है। यह सच था कि संपूर्ण इसराइल परमेश्वर का त्याग कर चुका था, परंतु वहां परमेश्वर के भक्त अब भी थे और परमेश्वर उनकी संख्या जानता था। मैं एक भाग बचाकर रखता हूं जिनका कभी विनाश नहीं होगा, इन्हीं बचे हुओं में से परमेश्वर अपनी प्रजा तैयार करता है जो उसके नाम का गुणगान करते थे और उसका आदर करते थे। यद्यपि इसराइल ने संसार में बहुत विपदाएं सही और हृदय विदारक अनुभव पाए, उनका सर्वनाश नहीं हुआ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, जब यूरोप से शासक उठेगा, इसराइली उसे मसीहा मानेंगे, क्योंकि वो उनके मंदिर का पुनर्निर्माण कराएगा, परंतु एक दिन वो आकर मंदिर में खड़ा हो जाएगा और घोषणा करेगा कि वही परमेश्वर है और उसकी उपासना की जाए, जिस पर यहूदी उसका विरोध करेंगे और वो उन पर अपना क्रोध और प्रकोप उंडेलेगा। ये समय महाक्लेश का समय होगा, जो इतिहास के सबसे भीषण कष्ट का समय होगा। उस समय भी परमेश्वर अपने लोगों को 3.5 वर्ष तक पेत्रा शहर के चट्टानों में सुरक्षित रखेगा। ये पुरुष यहूदियों का सर्वनाश करेगा। उसके सर्वव्यापी शक्ति और आर्थिक नीतियों के कारण यहूदी भीषण संकट में पड़ जाएंगे। आज लोग यहूदियों के विरोध में हैं। ये बड़े दुख की बात है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो बिना वजह यहूदियों से सख्त घृणा करते हैं और अकारण ही उनके प्रति कटु व्यवहार करते हैं। सत्य तो यह है कि ये पापी मनुष्य के मन की उपज है। ये दुर्भाग्य है कि उन्होंने आज तक मनुष्यों के हाथ दुख उठाया है, परंतु परमेश्वर के भक्त जन आज भी जीवित है और प्रभु के राज्यकाल में एक बार फिर आशीषित होंगे और पल्लवित होंगे और परमेश्वर के हजार वर्षीय राज में पृथ्वी के अधिकारी होंगे। उनका जो हुआ और जो होगा एक त्रासदी ही है, परंतु इसके उपरांत परमेश्वर के विश्वासी जन जीवित रहेंगे। रोमियो को लिखे पत्र के अध्याय 11 में पौलुस कहता है, परमेश्वर ने कहा, मैं कुछ लोगों को बचाए रखूंगा जो अन्य जातियों में भी तलवार से सुरक्षित रहेंगे, वो उनका सर्वनाश नहीं करेगा। आज एक यहूदी जहां भी है वहां अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाए हुए है। एहेस्केल अध्याय 6:9, और वे बचे हुए लोग उन जातियों के बीच जिनमें वे बंधुए होकर जाएंगे मुझे स्मरण करेंगे, और ये भी कि हमारा व्यभिचारी हृदय यहोवा से कैसे हट गया। कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर उनके उदंड मनों को तोड़ देगा जो परमेश्वर और उसके प्रेम से दूर होकर देवताओं के पीछे गए। एहेस्केल अध्याय 6:9-10, और व्यभिचारिणी की सी हमारी आंखें मूर्तों पर कैसी लगी है जिससे यहोवा का मन टूटा है। इस रीति से उन बुराइयों के कारण जो उन्होंने अपने सारे घिनौने काम करके की है वे अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरेंगे, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। वो फिर कहता है, एहेस्केल अध्याय 6:10 में आगे लिखा है, और उनकी सारी हानि करने को मैंने जो ये कहा है उसे व्यर्थ नहीं कहा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। मैं मजाक नहीं कर रहा कि मैंने कहा मैं इनकी हानि करूंगा। एहेस्केल अध्याय 6:11, प्रभु यहोवा यूं कहता है कि अपना हाथ मारकर और अपना पांव पटक कर कह। एहेस्केल की भविष्यवाणियां बड़ी सजीव थी। देखिए, पहले उसने अपनी बाईं ओर 300 दिन लेटकर ईंट पर चित्र बनाया, अब यहां वो पांव पटक कर ताली मारकर भविष्यवाणी कर रहा है। एहेस्केल अध्याय 6:11 से लेकर 13 तक, इसराइल के घराने के सारे घिनौने कामों पर हाय हाय, क्योंकि वे तलवार, भूख और मरी से नाश हो जाएंगे। जो दूर हो वो मरी से मरेगा और जो निकट हो वो तलवार से मार डाला जाएगा, और जो बचकर नगर में रहते हुए घेरा जाए वो भूख से मरेगा। इस भांति मैं अपनी जल जलाहट उन पर पूरी रीति से उतारूंगा, और जब हरेक ऊंची पहाड़ी और पहाड़ों की हरेक चोटी पर और हरेक हरे पेड़ के नीचे और हरेक घने बांज वृक्ष की छाया में जहां जहां वे अपनी सब मूर्तों को सुखदायक सुगंध द्रव्य चढ़ाते हैं। ये तीसरी बार उसने कहा वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। एहेस्केल अध्याय 6:13-14 तक, वहां उनके मारे हुए लोग अपनी वेदियों के आसपास अपनी मूर्तों के बीच में पड़े रहेंगे, तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। मैं अपना हाथ उनके विरुद्ध बढ़ाकर उस देश को सारे घरों समेत जंगल से ले रिबला की ओर तक उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर का एक ही उद्देश्य है कि वे जाने कि यहोवा ही एकमात्र परमेश्वर है।